أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جی، جیسے کہ ہم تلاش میں ہیں لیلت القدر کے، تو آپ نے کبھی یہ بات سوچی کہ یہ رمضان کیا چیز ہے اور یہ آخری عشرے میں لیلت القدر کا ایگزیکٹ نہ بتایا جانا، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دوبارہ بتا دیتا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آ جاتے پیغام، تھوڑی تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی اترے نہیں تھے، مگر نہیں بتایا گیا، اس کو ہڈن رکھا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں چھپایا گیا؟ ہم تو اپنی آسانی کے لیے سوچتے ہیں نا کہ ہائے بتا دیا جاتا تو مجھے اتنی راتیں نہ جاگنا پڑتا، پھر صرف اس رات ہی جاگتے، پھر کیا ہوتا؟ پھر تب بھی پتہ نہیں تھا کہ کوئی اس میں بھی جاگتا یا نہیں جاگتا. اگر پھر اسپیسیفک بتا دی جاتی اور کوئی اس کی پرواہ نہ کرتا تو گناہ بھی بہت ہونا تھا، اور اگر اس میں پھر پتہ ہونے کے باوجود کوئی غلط کاریاں کرتا تو تب بھی بہت گناہ ملنا تھا، عبادت نہ کرتا تب بھی، اور اگر گناہ کرتا تب بھی. اور دیکھیں، اگر ہمیں بتا دیا جاتا نا تو کوئی بھی ہم میں سے کسی اور رات میں جاگتا ہی نہ، کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی جاگتا. اللہ اکبر، جیسے کہ اب سب ذوق اور شوق سے اس عشرے میں جاگ رہے ہیں، نہیں تو ہر کوئی تاک رات میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اور اس بندے نے رمضان کے ختم ہوتے ہی اپنے اور کام دھندوں کو شروع کر دینا، وہ ہی دنیا کے جھمیلوں میں اس نے پڑ جانا. ابھی تو ہم اپنے آپ کو کافی کنٹرول کیے ہوئے نا، مگر جتنا مرضی آپ کہہ لیں وہ بات رمضان کے بعد نہیں بنتی جیسی رمضان میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے رمضان کا آخری عشرہ ایسا کر دیا کہ اتنے ریوارڈز اس میں بھر دیے، اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں دے دی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اب ہم اپنی آسانی دیکھ رہے ہیں نا، ہائے ایک رات کیوں نہیں مل گئی، اور اس طرف دیکھیں کہ ایک بندہ سوچے ایک رات جاگ گیا اور عبادت کرے، بے شک ہو کہ وہ 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، لیکن ایک بندہ ایک رات جاگے اور ایک بندہ 10 راتیں جاگ رہا ہے یا 5 راتیں جاگ رہا ہے، کس کا اجر زیادہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اجر دینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اتنی بڑی بڑی جیسے سمجھ لیں گفٹس رکھ دیے نا، کہ مثال کے طور پہ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، مثال کے طور پہ کہ اس میں سلامتی سلامتی ہے، اس میں تقدیروں کے فیصلے دے دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس میں ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام خود زمین پر تشریف لے آتے ہیں. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جبرائیل علیہ السلام کا سٹیٹس، کہ کتنا اونچا سٹیٹس ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے تتنزل الملائکہ تو بس، لیکن فرمایا ور روح، اور روح بھی اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیلیگیٹس سمجھ لیں بھیج دیے آسمانوں سے زمین پر، وہ فرشتہ جو انبیاء پر وحی لے کر آتا ہے، اس کے سٹیٹس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچے مقام پر ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں، جتنے فرشتے ہیں، فرشتوں کی گنتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. وحی لانے کا کام کتنا مقدس کام ہے نا، سدرۃ المنتہا کے سینٹر میں جہاں ان کا مقام ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ. ایون یہ کہ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. دیکھیں اس حدیث میں یہ نہیں کہ کسی اور فرشتے کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی اسے محبت کرو. اور سبحان اللہ، اس کا مطلب جبرائیل علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے، مطاع ثم امین، ان کی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ، امانت دار فرشتے ہیں وہ بہت. تو ان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے زمین پہ کس کے لیے؟ زمین پہ کون سے کوئی انبیاء رہ رہے ہیں اس وقت؟ किसके लिए भेजता है? हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए, अपने इतने मुकद्दस फरिश्तों को, और दूसरे भी वो वाले फरिश्ते हैं जो सारे रहमत के फरिश्ते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं मोमिनों से, इतना उनको पसंद करते हैं, उनके लिए जमीन पे उतर जाओ तो सब गुनाहगार लोग हैं, सब बहुत ही लो स्टेटस वाले लोग हैं, कोई भी ऐसा को बहुत हाई क्लास तो कोई भी नहीं है इस वक्त जमीन के ऊपर। पैगंबर हुआ करते थे, फिर सहाबा कराम, ऐसे तो कोई भी नहीं है। आप अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह ताला किसके लिए इनको उतार रहा है? अल्लाह हु अकबर। और फिर सलामती है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फाजिर, सलामती सलामती है। अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे ना तो फरिश्ते उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सलामती हो तुम पर। और यहां पे है सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। तो सोचें जहां कोई अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ है वहां आकर फरिश्ते कह रहे हैं सलामुन अलैकुम, जमीन पे ही उनको अल्लाह के फरिश्तों का सलाम मिल रहा है, वो जो जन्नतियों को जन्नत में मिलेगा वो इनको जमीन पे मिल रहा है। अल्लाह हु अकबर। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि फरिश्तों का सलामती भेजना, सलाम है क्या पहले ये बताएं, सलामती की दुआ है ना, तो वो उस बंदे को दुआ दे रहे हैं सलामती की, जिसको फरिश्तों की दुआएं मिल जाएं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ मिल जाए और क्या चाहिए। हम तो लोगों को मिलते करते फिरते हमारे लिए दुआएं कर दो, हमारे लिए दुआ कर दो, उसको पता नहीं याद भी रहता हो कि नहीं, तो फरिश्ते दुआएं कर दें। और वो भी वो फरिश्ते के जो, अब देखिए हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मुलाकात नहीं की, लेकिन ये वो फरिश्ते हैं जिब्राईल अलैहि सलाम, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त फरिश्ते थे, उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, जिनका अल्लाह ताला के यहाँ इतना मकाम है। वो घर घर जाते हैं, ईमान वाले जो इबादत में मसरूफ होते हैं उनके पास जाते हैं, सलामती की दुआएं करते हैं उनके लिए। ये वो तोहफे हैं जो वो लेकर आते हैं आसमान से, सलामती का तोहफा ला रहे हैं, गिफ्ट है। तो उनके तोहफे कितने खूबसूरत तोहफे हैं, कितने यूनिक तोहफे हैं, सुभान अल्लाह, जिसको ये तोहफा मिल जाए, अल्लाह हु अकबर। तो अल्लाह ताला इन निकम्मे से गुनाहगार से बंदों के लिए अपने इतने इज्जत वाले मुअज्जत फरिश्तों को उतार रहा है। ये हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कितने बड़ी अल्लाह ताला ने हमें शर्फ दिया ये, अल्लाह हु अकबर। और सोचें एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया और फरमाया अल्लाह ताला खदीजा को सलाम भेजता है, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो बहुत खुश हुई। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूल अल्लाह आप खदीजा को मेरा भी सलाम कहते हैं। ये कितना बड़ा ऑनर मिला हज़रत खदीजा को कि अल्लाह ताला का और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का सलाम उनको मिल गया। और सोचें इस रात में अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नाजिर फरमा रहा है और वो आके जहाँ जहाँ अल्लाह के बंदे इबादत में लगे हुए हैं, चाहे वो गुनाहगार बंदे ही हैं मगर जो कोशिशें कर रहे हैं अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, वो तड़प रहे हैं, उनको जगाया हुआ इस चीज़ ने, वो तस्बीहात कर रहे हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनको आके सलाम करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है जाओ तुम जाके सलाम उनको करो। कितनी बड़ी बात है, ऐसे लोगों की किस्मत के क्या कहने कि जिनको इनमें से एक रात मिल जाए जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके साथी फरिश्ते सलाम लेकर आ जाए। अल्लाह अकबर। और दूसरे ये कि कयामत के दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे वहाँ पे तो अल्टीमेट सलाम मिल जाएगा ना, वो तो जो क्लाइमेक्स है सलामती का वो मिल जाएगा। और वो क्या है, सूरह यासीन में आता है ना सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, रब्बे रहीम की तरफ से सलाम हो, वो तो बड़ी चीज़ है। तो जिनको दुनिया में फरिश्तों का सलाम मिल गया उनको इंशाल्लाह वहाँ पे भी फिर जन्नत में अल्लाह ताला का सलाम मिलेगा। अल्लाह हु अकबर। तो अल्लाह ताला ने इतना इस इन रातों को, ये इस आखिरी अशरे को इतना फुल ऑफ गिफ्ट्स बना दिया है कि इंसान जो जो नहीं भी कभी अल्लाह ताला की तरफ आने का सोचता था ना, उसको भी, उसके भी मुंह में पानी आ जाता है, वो भी लालच करता है कि चलो मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। आप देखें किसी जगह लिखा हो ना फ्री गिफ्ट, तो ऐसी खामखा बंदा कहता है चलो जाके देख ही लूं। किसी जगह लिखा हो ना 90% ऑफ सेल, तो बंदा कहता है नहीं भी कुछ लेना, तो इंसान कहता है चलो जाके देखने में क्या, 90% तो बहुत है ना। यहाँ पे समझने ऐसे ही है, वो स्टोर वाले ऐसे क्यों लगाते हैं, वो आपको भुलाना चाहते हैं ना, ये थोड़ी कि आपसे छुपाना चाहते हैं चीजें, इसलिए वो इतना बड़ा बड़ा लगा के बाहर डिस्प्ले करते हैं कि 90% ऑफ है, कि आप आए तो सही। तो अल्लाह ताला ने अपने इस महीने को और इस अशरे को खास तौर पे इस तरह बड़े बड़े बैनर्स के साथ सजा दिया है कि 1,000 महीनों से ज्यादा बेहतर, फरिश्ते उतर रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं, इतनी जबरदस्त रात है कि तुम्हें क्या पता ये रात है क्या, तुम्हें क्या पता। और फिर सलामती सलामती, सलाम है तुम्हारे ऊपर, सलामती आ रही है, यानी इंसान फिर सोचता है अच्छा भाई मैं क्यों इससे महरूम रहूं। तो यही तो हमें समझ नहीं आती कि ये जो हमें रिवॉर्ड्स दिखाए गए हैं या गिफ्ट दिखाए जा रहे हैं, ये बड़े बड़े अजर के वादे, तो ठीक है वो तो अल्लाह ताला हमें देना चाहता है, मगर इसके पीछे आप सोचते नहीं है कि अल्लाह ताला क्या चाहता है। उसको तो मेरी और आपकी बातों की थोड़ी जरूरत है कि हम जागे रहें, तो उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा, ना हमारे सजदों की, ना हमारे कुरान पढ़ने की, और ना हमारे बख्शिश मांगने की, उसको तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी कौन सी बादशाहत में इजाफा हो जाना। आप अभी तक समझे नहीं कि अजर के ये वादे सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे करीब लाने के बहाने हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसे करीब आ जाएं। इसमें ना एक छोटी सी, एक वह तो बहुत ही घटिया सी मिसाल है ये, तो अल्लाह ताला की मिसाल तो बहुत आला है कि जैसे मैंने आपको स्टोर की मिसाल दी कि स्टोर वाले चाहते हैं कि आप आए, एक दफा आप स्टेप इन तो करें, तो वो फिर इसलिए वो बैनर लगाते हैं, उनको पता है कि ये आएगा देख के, तो असल में आपको बुलाना मकसद होता है। अल्लाह ताला भी आपको अपने से करीब करना चाहता है, इसलिए वो बुला रहा है इन चीजों के जरिए। वो फासले जो 11 महीने में पैदा हो गए थे ना, वो अब खत्म करने का वक्त है, कि जब रात हो जाए और तन्हाई हो जाए, तो अल्लाह ताला चाहता है कि ये अकेला होके मुझसे बात करे। फिर देखो ये फासले कितनी तेजी से खत्म होते हैं। वो चाहता है कि आप जो सारा साल ना सही, अब कम अज कम 1-to-1 अल्लाह ताला से लौ लगाएं। वो चाहता है कि आप दुनिया से कट के सिर्फ अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जोड़ दें, जिससे मोहब्बत हो। फिर क्या दिल चाहता है, हजूम में उससे बातें करना का दिल चाहता है, या अकेले में, प्राइवेट में दिल चाहता है ना, कि टाइम दे दे ये मुझे, मैं हूं और ये हूं और मेरी बात बस सुनी जाए, सारी बस तवज्जो मेरी तरफ हो। और यहां पर अल्लाह ताला चाहता है कि तुम अकेले हो जाओ, ये तकाबी तो इसी का नाम है, अकेले हो जाओ अल्लाह ताला के लिए। तो सोचें वो तो मायल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं, वो तो चाहता है निछावर करना अपनी रहमतें, कोई लेने वाला तो आए, वो हमारा मुंतजर है, उसने इसीलिए इतने बड़े बड़े वादे किए हैं कि अब फिर इसके बाद वो कौन होगा जो इन रातों की इबादत को छोड़ सके। हमारा हाल तो ये हो गया ना कि सारा साल हम इस कदर अपनी दुनिया में मगन रहते, जॉब है, बच्चे हैं, घर हैं, इनसे निकले तो कोई पॉलिटिक्स है, तो कोई सोशल मीडिया है, तो कोई कुछ है। इंसानों को इतना ज्यादा इन चीजों ने अपने अंदर गर्क कर लिया ना, कि हमें तो अब ख्याल भी नहीं होता कि हमारा कोई रब है जिससे हमने बातें करनी है, हमारा कोई मालिक भी है जो हमारा मुंतजर है कि हम उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। हमारा एक खुदा है जिसकी तरफ हमने पलट के जाना है, ये इसका ख्याल ही नहीं रहता। हम इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं अपनी जिंदगियों में कि हमें होश ही नहीं है किसी चीज का भी। किसी की नमाज नहीं हो रही, किसी की हो रही है तो भी जैसी तैसी हो रही है, किसी की दो हो रही है तो तीन छूट रही है। और इसके अलावा तो हमें यही नहीं होश होता कि हम किधर से आए हैं, हमने किधर जाना, कहाँ पलट के जाना। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जैसे जैसे जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, आप देखें हमारी सेहतें, हमारी हिम्मतें कम होती चली जा रही, और ये हमें बता रहा है। जब हम कहते हैं ना, हाय कमर में दर्द हो रही, हाय घुटने में दर्द हो रही, या हाय अब मेरी नजर कमजोर इतनी हो गई है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे ग्लासेस की जरूरत है, तो ये सारे साइंस हैं कि आपका सामान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तैयारी कर लें। लेकिन हम में से अक्सरियत का हाल ये है कि जब तक हम किसी, अल्लाह माफ करे, बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, हम सिंसेरिटी से अल्लाह ताला को पुकारते भी नहीं है, दुआएं भी नहीं करते। बाकी दिनों में दुआएं भी बस ऐसे होती हैं कि जैसे कोई और ही कर दे। दुख तो इस बात का है ना कि वो रब जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए थी, उसको भुला के हमने अपनी मोहब्बतों का महवर किसी और को बना लिया। कैसे हम उसको भूल सकते हैं जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, उसको भूल कर जिसके पास से हम आए हैं, जिसके पास जाना है, और बाकी सबको याद रखा, उसी को भुला दिया। ये चीज कितनी तड़पा देने वाली है ना। दिल नहीं चाहता क्या कि एक एक को पकड़ के अल्लाह ताला की पहचान करा दे, दिखा दे कि ये तुम्हारा रब कैसा है। वो इतना मेहरबान है, उसकी तो वफा की कोई हद नहीं और हमारी जफा की कोई हद नहीं। वो इतना रहीम और हम इतने संदे। वो करीब करना चाहता है, हम दूर भाग रहे हैं। क्या हो गया हमें? हमने तो उसको पहचाना तक नहीं, और इसकी कोई कोशिश भी नहीं करना चाहते कि ये हमें फालतू काम लगता है शायद, और सब काम अहम है, ये फालतू है। मालिक को पहचानना, कुत्ता भी अपने मालिक को पहचानता है, कुत्ता जैसा जानवर जिसको हम बहुत हकीर समझते हैं, वो भी अपने मालिक को पहचानता है। और उस रब ने गिला किया है मुझसे और आपसे। सूरह आदियात में घोड़े को ही देख लो, या इंसान, घोड़े की वफादारी ही देख ले, वो तो जानवर है ना, वो भी अपने मालिक का वफादार है। तो घोड़े से भी गया गुजरा हो गया कि अपने मालिक को ही नहीं जाना, उसी से वफादारी नहीं निभाई। जानवर जंगों तक में अपने मालिक से वफादारी निभाता है, उसकी अपनी कोई दुश्मनी नहीं होती, वो जंग में कूद जाता है अपने मालिक की खातिर। हाँ, और तुम इतने बेवफा। आज देखो लोगों को कहा जाता है कि अल्लाह ताला के कलाम को समझो, वो आपसे बात करता है, आपका मालिक आपको भुला रहा है। एक दफा पढ़ के तो देख लो आपके मालिक ने आपको क्या बताया। हम टस से मस नहीं होते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी कहा जाए, हमारे दिमाग पे हमारे मसले इतने सवार हैं और हमारी तो मसरूफियात ही इतनी ज्यादा है, मालिक को पहचानने का भी टाइम नहीं। तो वाकई बाज इंसान जानवरों से भी नीचे चले जाते हैं कि जानवर भी अपने मालिक को पहचानता है, और इंसान इससे भी ज्यादा गया गुजरा हो जाता है। उसको पता ही नहीं किधर को भाग रहा है, क्या कर रहा है। तो ये टाइम है कि मालिक आपको खुद बुला रहा है, मालिक ने पहले कदम बढ़ा दिया। ये सारे हमें रिवॉर्ड्स का कह के ना एक लालच हमें दिया है कि चलो इस लालच में ही आ जाओ। मैं ये तो ख्याल आएगा नहीं कि मैं अपने मालिक से करीब हो जाऊं, मैं उसको पहचानूं, मैं उसके लिए सजदे करूं, उसके आगे रोऊं, उसको मनाऊं, उसकी तस्बीहें करूं, उसकी तारीफें करूं, इसका तो ख्याल आना नहीं है। चलो लालच में ही कर लो कि तुम्हें ये मिलेगा ये मिलेगा। तो इंसान सोचे, कुछ देर के लिए सोचे, क्या ये सब वर्थ है जिन चीजों के पीछे हम अपने खालिक को भुला चुके, अपने रब को भुला चुके, उसकी पहचान नहीं जानते। उससे आंखें फेरी हुई हैं, कैसे हो सकता इंसान उसको ना पहचाने? तो क्या हो गया हमें? क्या ये पत्थर, गारे, मिट्टी की चीजें, लोहे की बनी हुई चीजें इतनी बेशकीमत है हमारे सामने कि करीम रब को ही भुला दिया? इस सब की कदरों कीमत, इसकी हैसियत तो मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है, ये बताया अल्लाह ताला ने। और तुम इतनी हकीर चीज के पीछे उस रब्बे कायनात को भुला देते हो। इसीलिए उसने गिला किया ना, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, है इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया अपने करीम रब से? वो तो बड़ा करीम है, उससे तू किस चीज ने तुझे दूर कर दिया, किस चीज ने तुझे भुला दिया? वो रब जिसने अल्लाह दी खलक का, उसने तुम्हें पैदा किया है, और ऐसे ही पैदा करके गोश का लोथड़ा नहीं फेंक दिया, तुम्हें संवारा, तुम्हारा नोक पलक संवारी तुम्हारी, तुम उसी से बेवफाई करते हो। हमारा हाल ये है बस, ये रमजान के रमजान हम अल्लाह वाले बन गए, और जो ही रमजान खत्म हुआ सब बुला दिया, चलो अब सब अपने अपने काम करो, हो गया रमजान ओवर, इतनी देर के लिए बस अल्लाह वाले बनना था। तो दूर ना जाए, करीब आए। ये रमजान तो हमें टेस्ट कराने के लिए है कि अल्लाह ताला की इबादत का मजा क्या होता है, उससे करीब आने का मजा क्या है, उसके साथ बात करने की लज्जत क्या होती है। ये तो हमें ये सिखाने के लिए है, ये थोड़ी है कि उसके बाद वापस पलट जाए। तो जरूर सोचें इन बातों पे, यही तो वक्त है सोचने का। रमजान गुजर गया तो कहाँ की बातें और कहाँ की सोचें और कहाँ का रातों को जागना और कहाँ, ये सब तो फिर खत्म हो गया ना, भूल ही जाना है कि हमने कभी कुछ पुकारा भी था। तो खुद को लूज ना छोड़े, अपने साथ भलाई करें, अपने आप को कहीं बांध लें, ताकि चलो मजबूरी ही सही मगर कोई तो याद दिलाता रहे बार बार, रब की पहचान कराता रहे। हम फिर भूलने लगे फिर कोई बुला ले, फिर हम भूलने लगे फिर कोई याद दिला दे। तो मैं बार बार कहती हूं, खुद को कुरान से जोड़ लीजिए, खुद को बांधे, खुद के साथ सख्ती करें, खुद को सीधा करें। और अगर आपने इसके बगैर ही रमजान गुजार दिया, निकल गए इससे, तो फिर तो बाद में ख्याल भी नहीं आना, पलट के देखना ही नहीं है। तो यही दिन है, यही रातें हैं सोचने की, सोचें और आप आज एक कदम बढ़ा लें अल्लाह ताला की तरफ। आपके साथ पहले भी लिंक्स शेयर किए हैं, आप क्लासेस ले लें, कहीं जुड़ जाएं, ताकि अल्लाह ताला के कलाम से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं है जो कि उसकी पहचान कराए। यही है उसकी पहचान, इससे ही हमें पता चलेगा अपने मालिक के बारे में। ये उसके अल्फाज हैं, ये उसका कलाम है, इससे मोहब्बत करें। जैसे इकरमा कहते थे, जिस वक्त कुरान को खोलते थे कहते थे मेरे रब का कलाम है, मैं रोने शुरू हो जाते थे, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम, कितनी मोहब्बत होगी ना। ऐसे में जहन में आता है जैसे एक माँ ना बच्चे की चीज देख लेती, कहती हाय मेरे बच्चे का, ये मेरे बच्चे का, इसको सीने से लगाती है, कितनी मोहब्बत होगी अल्लाह ताला से कि मेरे रब का कलाम है। और कुछ लोग उनको परवाह ही नहीं, रब का कलाम है तो होता, फिर हमें क्या। तो इस तरह की बेपरवाही ना करें, सारी दुनिया के काम आपके हो जाएंगे, सब कुछ संवर जाएगा, लेकिन ये वक्त वापस नहीं आएगा। रमजान पे रमजान आता जाएगा और जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। तो अल्लाह ताला से मांगे हिम्मत भी, तौफीक भी, और अपने आप को इस तरफ लेकर आए, खींच के खुद लेकर आए। और इंशाअल्लाह ताला हम जब अब दुआ भी करेंगे तो देखें, क्या पता है कि ये लैलतुल कदर हो, हम यही कहेंगे ये चलो आज ही है लैलतुल कदर मसलन, तो क्या मांगना चाहेंगे और कैसे मांगेंगे? आपने भिखारियों को देखा है जो हमारे मुल्कों में भिखारी होते हैं, कैसे मांग रहे होते हैं वो? वो आपकी गाड़ी से चिमट ही जाते हैं, बाजी दे देना, बाजी दे दे, बाजी दे दे, बाजी दे, करते ही जाते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा चलो इसको कुछ ना कुछ तो दे ही देती हूँ। तो अल्लाह ताला के सामने ना भिखारी बन जाए कि अल्लाह दे दे, बस दे दे, तू नहीं देना है बस दे दे, तड़प के कहें और बार बार मांगे बार बार। तो अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो जरूर देगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इसके लिए रेडी हो जाए, इंशाल्लाह दुआ के लिए अपनी लाइट्स कोशिश करें अगर ऑफ करके, और आप एक तरफ बिल्कुल तन्हा हो जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि दुआ के अंदर इंसान अल्लाह ताला को पुकारता है और अपना दिल उसके सामने खोल देता है। तो बेहतर यही है कि इंसान सबसे अलग होके और फिर दुआ करे सिंसेरिटी के साथ। तो हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे।